अध्याय 25 हिंद यूनानी। यूनानी उपनिवेश। सिकंदर महान विजेता तो था ही, उसके साथ ही साथ उसके कार्यों ने यूनानी संस्कृति और सभ्यता के प्रसार में भी योग दिया। अपने अभियान मार्ग पर उसने अनेक नगरों और उपनिवेशों की स्थापना की थी। ये स्थान सैनिक केंद्र होने के साथ साथ संसार में लघुत्तर यूनानों की भांति थे। अपनी भौगोलिक विशेषता के कारण बहुत दिनों तक उन्होंने एशिया और यूरोप के अनेक जल मार्गों एवं स्थल मार्गों को अपने नियंत्रण में रखा और इस प्रकार अपने देश की सुरक्षा तथा व्यापारिक प्रगति में योग दिया। साथ ही साथ उन्होंने बृहत्तर यूनान की स्थापना में विपुल योग दिया। यूनानियों ने इन्हीं सैनिक आधारों से एशिया के विभिन्न प्रदेशों में अपना सैनिक प्रभुत्व स्थापित किया। परिणामतः कुछ समय तक यूनानियों का इतिहास संपूर्ण मध्य एशिया और पूर्वी एशिया का इतिहास बन गया। यह इतिहास उनका औपनिवेशिक इतिहास है, उनका सैनिक इतिहास है तथा उनका सांस्कृतिक इतिहास है। यूनानियों के प्रसार से भारतवर्ष अछूता न रहा। मौर्य काल के पतन से लेकर गुप्त काल के अभ्युदय तक भारतवर्ष का इतिहास प्रधानतः विदेशियों के साम्राज्यवादिता का इतिहास है। यूनानियों, शकों, पहलवों और कुषाणों के शासन का इतिहास है। बैक्ट्रिया, इस विदेशी साम्राज्यवादिता के इतिहास का अंकुरण सिकंदर द्वारा स्थापित बैक्ट्रिया नामक एक उपनिवेश से हुआ था। भारतवर्ष पर आक्रमण करते समय सिकंदर ने यहाँ एक यूनानी उपनिवेश बसाया था और यहीं से भारतवर्ष के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने की योजना बनाई थी। सैनिक दृष्टिकोण से यह प्रदेश अत्यंत सुरक्षित था। पूर्व में हिंदू कुश और पामीर की श्रेणियाँ इसकी सीमा निर्धारित करती हैं। दक्षिण में पेरोपनीसेडाई और आर्कोशिया के प्रदेश हैं। इसके पश्चिम में पार्थिया का राज्य और कैस्पियन सागर है और उत्तर में जगजॉटिस सर और ऑक्सस सरिताएं बहती हैं। इन्हीं सरिताओं से मिला हुआ सग्डियाना का प्रदेश है जो प्रायः बैक्ट्रिया के राज्य में ही समाविष्ट रहा है। प्राचीन काल में बैक्ट्रिया का राज्य अपनी उर्वरा भूमि के लिए प्रसिद्ध था। अपालोडोरस का कथन है कि वहाँ के निवासियों यूनानियों की समृद्धि का कारण बैक्ट्रिया की उर्वरता ही थी। आजकल इस प्रदेश का अधिकांश मरुस्थल है, परंतु प्राचीन काल में सर और आमू नदियों, इनकी सहायक नदियों तथा उनकी नहरों के जल ने इस प्रदेश को उर्वर बना दिया था। समरकंद का चतुर्थक प्रदेश मध्य एशिया के सबसे अधिक उर्वर प्रदेशों में गिना जाता था। मर्व की हरितिमाच्छादित भूमि सुविख्यात थी। कृषि के अतिरिक्त व्यापार में भी बैक्ट्रिया राज्य ने महत्वपूर्ण प्रगति की थी। यह एशिया और यूरोप के यातायात के मार्गों के मध्य में स्थित था। बैक्ट्रा और मर्व के नगर एशिया के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इसके अतिरिक्त बैक्ट्रिया राज्य अपनी बहुमूल्य खानों के लिए प्रसिद्ध था। बदकशा और सग्डियाना अपने अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्नों के लिए प्रख्यात थे। तारा प्रथम के अभिलेख में बहुमूल्य रत्नों के लिए इन प्रदेशों का उल्लेख मिलता है, परंतु बैक्ट्रिया में सोने और चांदी का सदैव अभाव रहा है। यूथिडेमस चांदी की नवीन मुद्राओं का अधिक निर्माण न करा सका। उसने प्रमुखतः पूर्व प्रचलित मुद्राओं को ही पुनः अंकित करके प्रसारित किया। दारा के अभिलेखों में बैक्ट्रिया के किसी भी ऐसे प्रदेश का उल्लेख नहीं मिलता जहां से सोना उपलब्ध होता हो। थियोडोट्स और यूथिडेमस की केवल एकाध स्वर्ण मुद्राएं ही उपलब्ध हुई हैं। इनके पश्चात तो यूक्रेटाइडीज को छोड़कर किसी भी यूनानी शासक ने स्वर्ण मुद्राओं का निर्माण न किया। यूक्रेटाइडीज की भी केवल एक ही स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है। बहुत संभव है कि वह भी आयात स्वर्ण से निर्मित कराई गई हो। इसी प्रकार सक शासक भी स्वर्ण मुद्राओं का निर्माण न करा सके। केवल कुषाण शासकों ने ही नियमित रूप से स्वर्ण मुद्राओं का निर्माण कराया था, परंतु यह निर्माण भी रोम साम्राज्य से हस्तगत हुई स्वर्ण निधि की सहायता से ही संभव हो सका था। इस प्रकार बैक्ट्रिया राज्य की भौगोलिक अवस्था में ने अनेक प्रकार से उसके इतिहास को प्रभावित किया था। थियोडोरस वंश। बैक्ट्रिया सेल्यूकिड सीरिया का एक प्रांत था। 250 ईस्वी पूर्व एटियोक्स द्वितीय सीरिया का राजा था और डियोडोरस प्रथम उसके अधीन बैक्ट्रिया का गवर्नर। जस्टिन के कथनानुसार इसी काल के लगभग डियोडोरस प्रथम ने अपनी प्रभु नरेश के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और बैक्ट्रिया में अपना स्वतंत्र शासन घोषित कर दिया। बैक्ट्रिया में दो प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। प्रथम में डियोडोरस प्रथम का चित्र है, परंतु साथ में एंटियोक्स द्वितीय का नाम अंकित है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि यद्यपि डियोडोरस प्रथम एंटियोक्स की अधीनता में ही बैक्ट्रिया प्रांत में शासन कर रहा था, तथापि इसने उसकी शक्ति बढ़ गई थी और वह राजकीय मुद्राओं पर स्वयं अपना नाम अंकित करवाने लगा था। कालांतर में द्वितीय प्रकार की मुद्राओं पर हम डियोडोरस प्रथम का चित्र और नाम दोनों पाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि कुछ समय पश्चात उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। 247 ईस्वी पूर्व एंटियोक्स द्वितीय की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र सेल्यूकस द्वितीय सीरिया साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। कदाचित पार्थिया के विरुद्ध अपनी राजनीतिक अवस्था को सुदृढ़ करने के हेतु नवीन सम्राट नेक्रपनी बहन का विवाह बैक्ट्रिया के स्वतंत्र गवर्नर डियाडोट्स प्रथम के साथ कर दिया। इस प्रकार सीरिया सम्राट ने बैक्ट्रिया के स्वतंत्र राज्य को समान स्तर पर मान्यता प्रदान की और उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके अन्य अधीनस्थ प्रांतों की उदयमाना विद्रोहात्मक प्रवृत्ति का दमन करने के हेतु अपनी स्थिति सुदृढ़ की। 230 ईस्वी पूर्व डियोडोट्स प्रथम की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र डियोडोट्स द्वितीय राज्याधिकारी हुआ। उसने अपने पिता की नीति का परित्याग कर दिया और सीरिया के विरुद्ध पार्थिया से मैत्री संधि कर ली। डियोडोट्स द्वितीय की विमाता सीरिया वंश की थी, अतः उसे यह नीति परिवर्तन अरुचिकर प्रतीत हुआ। इसके साथ साथ बैक्ट्रिया के यूनानी निवासियों को भी यूनानी सेल्यूकिड राज्य सीरिया के विरुद्ध अपने नवीन नरेश की नीति अप्रिय लगी। उनके लिए यूनानी सीरिया पार्थिया की अपेक्षा अधिक निकट था। इस राजनीतिक परिस्थिति ने महत्वपूर्ण परिणाम प्रस्तुत किए। डियोडोट्स द्वितीय की विमाता ने यूट्रिडेमस नामक एक सरकार से पुनर्विवाह कर लिया। कदाचित राजविमाता की प्रेरणा और सार्वजनिक असंतोष से लाभ उठाकर यूट्रिडेमस ने डियोडोट्स द्वितीय का वध कर डाला और बैक्ट्रिया में अपने नवीन राजवंश की स्थापना की। एंटियोकस द्वितीय और यूथिडेमस का युद्ध। इस समय तक सेल्यूकस द्वितीय की मृत्यु हो गई और एंटियोकस द्वितीय सीरिया का सम्राट बना। यह एक महत्वाकांक्षी शासक था। सीरिया के विलुप्त गौरव की पुनर्स्थापना करने के हेतु उसने बैक्ट्रिया को पुनाधीन करने का भगीरथ प्रयास किया। पोलीबियस का कथन है कि उसने यूथिडेमस को 208 ईस्वी पूर्व के लगभग बैक्ट्रा नगर में घेर लिया। दो वर्ष तक घेरा पड़ा रहा। उद्धार का अन्य उपाय न देखकर यूथिडेमस ने अंतिम चाल चली। उसने सम्राट के समक्ष नम्रता से कार्य किया और कदाचित उसके सम्मुख यह मत प्रस्तुत किया कि मैं सेल्यूकस वंश का विरोधी नहीं हूँ, मैंने तो स्वयं उस वंश के विरोधी डियोडोट्स द्वितीय का वध कर डाला है। मेरा सम्राट से कोई बैर नहीं, परंतु यदि ने पर भी सम्राट मेरे विरुद्ध कार्यवाही जारी रखते हैं तो मुझे विवश होकर उत्तर की बर्बर शक जाति को अपनी सहायता के लिए आमंत्रित करना पड़ेगा। कदाचित एंटियोकस द्वितीय की बुद्धि में यह बात समा गई। उसने घेरा उठा लिया और यूथिडेमस को स्वतंत्र शासक स्वीकृत कर दिया। यही नहीं, मैत्री की दृढ़तर करने के लिए एंटियोकस ने अपनी पुत्री का विवाह यूथिडेमस के पुत्र डेमेटियस के साथ कर दिया। पॉलीबियस का कथन है कि संधि के पश्चात एंटियोकस द्वितीय ने कॉक्सेस पार किया और भारतवर्ष के राजा सोफागेसेनस से संधि कर ली। सोफागेसेनस का संस्कृत सुभाग सेन होता है। कदाचित यह तारानाथ द्वारा उल्लिखित वीर सेन का ही कोई संबंधी था। डॉक्टर स्मिथ का मत है कि यह सुभाग सेन काबुल घाटी का कोई सामंत रहा होगा, परंतु यह मत न्याय संगत नहीं प्रतीत होता। पॉलीबियस स्पष्ट रूप से उसे भारतवर्ष का राजा कहता है। उसने नहीं इससे नहीं ध्वनित होता कि वह उत्तरी पश्चिमी भारत के किसी प्रदेश का स्वतंत्र शासक था। एक्टियोस और सुभाग सेन के बीच युद्ध हुआ अथवा नहीं यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु पॉलीबियस के कथन से प्रतीत होता है कि यूनानी सम्राट को इस भारतीय नरेश के विरुद्ध अधिक सफलता नहीं मिली और विदेशी आक्रमणकारियों ने सुभाग सेन के साथ संधि कर लेना ही कल्याणकर समझा। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि एक्टियोस का राज्य हिंदू कुश के पूर्व में विस्तृत न हो सका। यूथिडेमस का राज्य विस्तार। यूथिडेमस एक साहसी और महत्वाकांक्षी शासक था। अपनी बुद्धि और बल से उसने बैक्ट्रिया का राज्य प्राप्त किया तथा सीरिया के सम्राट एक्टियोस से मोर्चा लिया। विवश होकर सम्राट को उसे बैक्ट्रिया का स्वतंत्र शासक मानना पड़ा। बैक्ट्रिया में अपनी स्थिति दृढ़ करने के पश्चात यूथिडेमस ने चतुर्दिक राज्य विस्तार किया। उत्तर पूर्व की ओर फार्गना का प्रदेश था। यह निकिल धातु के लिए प्रसिद्ध था। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है कि बैक्ट्रिया में धातु की कमी थी, अतः यूथिडेमस ने निकिल धातु प्रधान फार्गना पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। यूथिडेमस के उत्तराधिकारियों ने इस विजित प्रदेश में फार्गना की निकिल धातु से मुद्राओं का भी निर्माण किया था। उत्तर पश्चिम में उसकी मुद्राएं बुखारा में मिली हैं। इससे प्रकट होता है कि सोग्डियाना का प्रदेश भी उसके अधिकार में था। पश्चिम में उसने पार्थिया पर आक्रमण किया, उसका कुछ भाग अपने राज्य में मिला लिया, परंतु सबसे अधिक सफलता उसे दक्षिण और दक्षिण पूर्व में मिली। उसकी काशी की मुद्राएं पेरिपिटनी से डाई और कोशिया और सिस्तान के विस्तृत भूखंड में उपलब्ध हुई हैं। अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि अफगानिस्तान का अधिकांश और पूर्वी फारस का कुछ भाग यूथिडेमस के अधिकार में था। टन महोदय का कथन है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व के ये प्रदेश यूथिडेमस के पुत्र उत्तराधिकारी डेमेटियस ने जीते थे। स्वयं यूथिडेमस ने नहीं, अपने मत की पुष्टि में इस विद्वान का तर्क है कि ये भाग सीरिया साम्राज्य के अंतर्गत थे। सीरिया साम्राज्य की दुर्व्यवस्था 190 ईस्वी पूर्व के मैग्नीशिया युद्ध के पश्चात ही हुई थी। अतः इसी तिथि के पश्चात यूथिडेमस वंश ने सीरिया के कुछ अधीनस्थ प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया होगा, परंतु टान महोदय का कथन है कि 190 ईस्वी पूर्व तक यूथिडेमस मर चुका, अतः उपयुक्त प्रदेशों की विजय उसके पुत्र डेमेटियस ने की होगी। जहां तक इन प्रदेशों में प्राप्त यूथिडेमस की मुद्राओं का प्रश्न है, टर्न महोदय का कथन है कि राज्य प्राप्त करने के पश्चात कुछ काल तक डेमेटियस ने अपने राज्य में अपने मृतक पिता की मुद्राओं को चलने दिया था। यही कारण है कि यूथिडेमस की मुद्राएं उन प्रदेशों में प्राप्त होती हैं जो स्वयं उसके अधीन न थे वरन जिन्हें उसके पुत्र ने जीता था। टर्न महोदय का तर्क प्रमुखतः इस बात पर निर्भर है कि 190 ईस्वी पूर्व तक यूथिडेमस की मृत्यु हो गई थी, परंतु यह मत पूर्ण रूप से असंदिग्ध नहीं है। ऐसी अवस्था में यह भी संभव है कि उपयुक्त प्रदेशों की विजय स्वयं यूथिडेमस ने ही की हो। यूथिडेमस और भारतवर्ष। कनिंघम आदि कुछ विद्वानों का मत है कि यूथिडेमस ने भारतवर्ष पर भी आक्रमण किया था, उसके कुछ प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया था। इस मत की पुष्टि में दो तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला, रावलपिंडी में यूथिडेमस की कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। दूसरा, तालमी का कथन है कि शौकल अर्थात सियालकोट का नाम यूथिडेमस था। विद्वानों का कथन है कि अपनी भारत विजय के स्मारक स्वरूप यूथिडेमस ने शाकल को अपना नाम दिया था, परंतु इन दोनों तर्कों में पर्याप्त बल नहीं है। जहाँ तक भारतवर्ष में प्राप्त यूथिडेमस की मुद्राओं का प्रश्न है, वे संख्या में इतनी कम है कि उनके आधार पर यूथिडेमस की भारत विजय सिद्ध नहीं की जा सकती। कदाचित ये मुद्राएं यात्रियों और व्यापारियों द्वारा भारतवर्ष में पहुंची होंगी। नगर के नामकरण से भी कोई तथ्य नहीं निकलता। प्रथमतः यह नहीं कहा जा सकता कि तालमी के उपयुक्त कथन में किसी सत्यता है, कितनी सत्यता है। द्वितीय, नगर की स्थापना अथवा नामकरण यूथिडेमस के पुत्र डेमेटियस अथवा उसके किसी अन्य उत्तराधिकारियों के द्वारा ही हो सकता था। पुनः कोई भी यूनानी यूथिडेमस को भारत विजेता नहीं कहता। ऐसी अवस्था में हम यह नहीं स्वीकार कर सकते कि यूथिडेमस ने भारतवर्ष का कोई प्रदेश जीता था। यूथिडेमस की एक प्रकार की मुद्राओं पर हेरक्लीस एक शिलाखंड पर विश्राम करते हुए प्रदर्शित किया गया है। ऐसा व्यंजित होता है कि ये मुद्राएं यूथिडेमस ने अपने शासन के अंतिम चरण में निर्मित कराई थी, जिस समय वह संधि विग्रह के राजकीय कार्य में निर्मित होकर छह जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत कर रहा होगा। अपनी अंतिम मुद्राओं पर यूथिडेमस वृद्ध दृष्टिगत होता है। संभवतः यूथिडेमस के तीन पुत्र थे, डेमेटियस, एटिमेक और अपोलोडोरस। इन तीनों के नामों का उल्लेख साहित्य मुद्राओं दोनों में हुआ है। डेमेटियस यह प्रथम इंडो ग्रीक शासक था जिसने भारतवर्ष में अपना राज्य स्थापित किया था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यूथिडेमस की मुद्राओं पर हेरक्लीस शिलाखंड पर विश्राम कर रहा है, परंतु डेमेटियस की मुद्राओं पर वह खड़े हुए तथा राजमुकुट पहने हुए प्रदर्शित किया गया है। इस चित्र से कदाचित डेमेटियस की महत्वाकांक्षा, अध्यवसायशीलता तथा साम्राज्य विस्तार कारिणी नीति की उद्घोषणा होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि डेमेटियस के समक्ष सिकंदर महान का आदर्श था। वह सिकंदर महान की भांति अपने सिर पर एलिफेंट स्क्लैप पहने हुए है। उसी की भांति उसने अज्ञेय की उपाधि धारण की। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि पश्चिमी शुंग के समय में हुए यमन आक्रमण का नेता डेमेटियस ही था, तो निश्चित रूप से भारतवर्ष में उसका राज्य विस्तार सिकंदर की अपेक्षा अधिक था। कुछ साक्ष्य एवं जनश्रुति ऐसी हैं जो वस्तुतः डेमेटियस को भारत में सिद्ध करती हैं। पहला, यूनानियों की मुद्राएं अधिकांशतः वित्ताकार की होती थी, परंतु डेमेटियस की कुछ मुद्राएं भारतीय मुद्राओं की भांति वर्गाकार पाई गई हैं। ये द्विलिपिक हैं। यूनानी भाषा के साथ साथ इन पर भारतवर्ष में उत्तरी पश्चिमी प्रदेश की लिपि खरोष्ठी का प्रयोग किया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी भारतवासियों के प्रयोग के लिए भी निर्मित हुई थी। दूसरा, युग पुराण में धर्ममीत का नाम आता है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह डेमेटियस का ही रूपांतर है। टर्न महोदय का कथन है कि इसका अर्थ धर्म का मित्र भी हो सकता है। इस उपाधि को डेमेटियस ने धारण किया था। तीसरा, स्ट्रैबो का कथन है कि भारत विजय आंशिक रूप से मिनेंडर ने की और आंशिक रूप में डेमेटियस ने की थी। चौथा, वेशनगर में एक सील मिली है जिस पर निमित्त लिखा हुआ है, कदाचित डेमेटियस की ही सील है। डेमेटियस का साम्राज्य। इन समस्त साक्ष्यों से भारत और डेमेटियस का संबंध निर्विवाद रूप से स्थापित हो जाता है। हम पहले कह चुके हैं कि पश्चिमी शुंग के शासनकाल में भारत उस पर जो यमन आक्रमण हुआ था, उसका नेता डेमेटियस ही था। इस आक्रमण में उसे आशाती सफलता हुई। कुछ समय के लिए वह कैस्पियन सागर से लेकर मगध तक और फरगना से लेकर वेरी गाजा तक के विशाल साम्राज्य का एक छत्र स्वामी बन गया। यूक्रेटाइडीज। पीछे कहा जा चुका है कि जिस समय डेमेटियस भारत विजय में संलग्न था, उसी समय उसके गृह राज्य बैक्ट्रिया पर आक्रमण हो गया और डेमेटियस को तत्काल लौटना पड़ा। बैक्ट्रिया के आक्रमण का नेता यूक्रेटाइडीज था। यह सीरिया के सम्राट एंटियोक चतुर्थ का सेनापति था और कदाचित राजवंश से संबंधित था। कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिन पर उसके पिता पिता हेलियोक्लीज और माता लाओडाइस के चित्र है। इसके पिता के शीर्ष पर राजमुकुट नहीं है, परंतु इसकी माता राजमुकुट पहने में चित्रित की गई है। इससे टान महोदय ने यह निष्कर्ष निकाला कि कदाचित उसका पिता एक साधारण नागरिक था, परंतु उसकी माता राजवंशीया थी। यूक्रेटाइडीज का काल। एंटियोक चतुर्थ के शासन काल में यूक्रेटाइडीज उसके पूर्वी प्रदेशों का गवर्नर था। बैक्ट्रिया में उसकी मुद्राएं मिली हैं जिन पर 165 ईसवी पूर्व की तिथि है। मुद्रा चित्र को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय यूक्रेटाइडीज 40-45 वर्ष का रहा होगा। अतः इस अनुमान के आधार पर यूक्रेटाइडीज की जन्मतिथि 210 या 5 ईसवी पूर्व के लगभग निकलती है। इसके शासनारोहण की तिथि भी अनुमान के आधार पर ही निकाली जा सकती है। जस्टिन का कथन है कि यूक्रेटाइडीज और मिथ्रिडेटिस दोनों एक ही समय राजा हुए थे। मिथ्रिडेटिस 175 ईसवी पूर्व में राजा हुआ था, अतः यही तिथि यूक्रेटाइडीज के शासनारोहण की भी मानी जा सकती है। यूक्रेटाइडीज की विजय। यूक्रेटाइडीज के महत्वपूर्ण विजय को सिद्ध करने में निम्नांकित चार बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहला, 166 ईस्वी पूर्व से शॉर्ट एंटीऑक्स चतुर्थ ने किसी उत्सव के उपलक्ष्य में सैन्य प्रदर्शन किया। दूसरा, डियोडोरस का कथन है कि उसने बेबीलोन में स्वतंत्रता दिवस मनाया। तीसरा, उसे एशिया का संरक्षक कहा गया है। चौथा, डियोडोरस का कथन है कि 165 ईस्वी पूर्व किसी भी अन्य देश से अधिक बलवान था। यदि हम इन समस्त उद्धरणों को समक्ष रखकर विचार करें तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि 167 ईस्वी के लगभग एंटीऑक्स चतुर्थ ने कोई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की होगी। उसी के उपलक्ष्य में उसने उत्सव मनाया होगा और उपाधि धारण की होगी, तथा यह विजय उसके सेनापति यूक्रेटाइडीज की ही होगी। 175 ईस्वी पूर्व एंटीऑक्स चतुर्थ सिंहासनासीन हुआ। उसने सीरिया साम्राज्य के विलुप्त गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करने के हेतु प्रयत्न किया और पूर्वी राज्यों को पुनः जीतने के लिए अपने सेनापति यूक्रेटाइडीज को भेजा। यूक्रेटाइडीज एक कुशल रणनीतिज्ञ था। उसने कुछ ही काल में यूथिडेमस वंश से सोग्डियाना, बैक्ट्रिया, एडियाना, आर्कोशिया, सिस्तान और ईरान के प्रदेश जीत लिए। इन विजित प्रदेशों की सूची जस्टिन से प्राप्त होती है। यूक्रेटाइडीज की मुद्राएं बैक्ट्रिया, सिस्तान, पेरोपोनेसोस, टाई, कपिशा और गांधार प्रदेश में पाई जाती हैं। अतः निश्चित है कि उसने बैक्ट्रिया पर अधिकार करने के पश्चात यूथिडेमिडी वंश से अन्य पूर्वी प्रदेश भी छीन लिए थे। यह संभव है कि सम्राट एंटीऑक्स चतुर्थ के जीवन काल तक उसका सेनापति यूक्रेटाइडीज नाम मात्र को उसके प्रति अपनी अधीनता प्रदर्शित करता रहा हो, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि सम्राट की मृत्यु के पश्चात वह पूर्ण रूप में सर्वसत्ताधिकारी नरेश बन बैठा। यूक्रेटाइडीज और भारत। अब प्रश्न यह आता है कि पंजाब के किसी भाग पर यूक्रेटाइडीज का अधिकार था अथवा नहीं। इस प्रश्न का टान महोदय का उत्तर नकारात्मक है, परंतु यह न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता। पश्चिमी पंजाब में यूक्रेटाइडीज की कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई है। पुनस्ट्रिबो का कथन है कि उसने हाई डेप्थ स्पीच पार नहीं की थी। इस कथन से ध्वनित होता है कि वह झेलम तक अवश्य गया होगा। तथा मुद्रा प्राप्ति और स्ट्रिबो के इस कथन के आधार पर हमारा निष्कर्ष यही है कि यूक्रेटाइडीज ने पश्चिमी पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया था। वह और आगे न बढ़ सका। इसका विशेष कारण यह है कि इस समय झेलम से लेकर मथुरा तक के प्रदेश के ऊपर मिनेंडर का राज्य था। संभव है कि यूक्रेटाइडीज ने झेलम को पार करने का प्रयास किया हो और वह मिनेंडर द्वारा परास्त कर दिया गया हो। यह भी संभव है कि मिनेंडर के साथ युद्ध की संभावना को दूर करने के लिए यूक्रेटाइडीज स्वतः झेलम से आगे न बढ़ा हो। द्वादश में प्राप्त यूक्रेटाइडीज की मुद्राएं द्विलिपिक हैं। उन पर यूनानी के साथ खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग मिलता है। खरोष्ठी का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि वे मुद्राएं भारतीयों के व्यवहार के लिए निर्मित की गई थी। प्रकार अपने उत्कर्ष की चरम सीमा पर यूक्रेटाइडीज का राज्य बैक्ट्रिया से लेकर झेलम तक विस्तृत था। हेलियोक्लोलीज। जिस समय यूक्रेटाइडीज भारतवर्ष की ओर आया था उस समय उसने बैक्ट्रिया का राज हेलियोक्लोलीज के सुपुर्द कर दिया था। हेलियोक्लोलीज यूक्रेटाइडीज का पुत्र था क्योंकि उसने अपने पितामह का नाम धारण किया था। दूसरा, यूक्रेटाइडीज का पतन। यूक्रेटाइडीज की सत्ता अधिक समय तक अकंटक न रही। स्नेह उसके चतुर्दिक विरोध सबल और संगठित होने लगा। जस्टिन का कथन है कि जिस समय वह डेमेटियस के साथ युद्ध कर रहा था उसी समय उसे सोग्डियाना के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। कदाचित ये लोग शक थे उसके राज्य की पूर्वी सीमा से लगा हुआ मिनेंडर का शक्तिशाली राज्य था। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ही दिनों में मिनेंडर ने उससे पेरोपोनेसोस और गांधार के प्रदेश छीन लिए। इन प्रदेशों में मिनेंडर की मुद्राएं मिली हैं। यूक्रेटाइडीज की दुर्व्यवस्था से लाभ उठाकर पार्थिया नरेश मिथ्राडेटीज ने भी उस पर आक्रमण कर दिया और राज्य का बहुत बड़ा भाग छीन लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने जीवन के अंतिम काल में यूक्रेटाइडीज एकमात्र बैक्ट्रिया के एक छोटे से प्रदेश का शासक रह गया था। यूक्रेटाइडीज की मृत्यु। पराजय के कुछ ही दिनों बाद हाइपाडीज की मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु तिथि 169 या 168 ईस्वी के लगभग रखी जा सकती है। जस्टिन का कथन है कि यूक्रेटाइडीज को उसके पुत्र हेलियोक्लूलीज ने मार डाला था, परंतु वही लेखक अन्यत्र कहता है कि यूक्रेटाइडीज की मृत्यु पार्थियन लोगों के हाथों से हुई। यदि हम दोनों कथनों पर सम्मिलित रूप से विचार करें तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि कदाचित हेलियोक्लूलीज स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने पिता के शत्रु पार्थियनिडेस के साथ मिल गया था और दोनों की कुमंत्रणा से ही यूक्रेटाइडीज की मृत्यु हुई। तान महोदय जस्टिन के कथन पर विश्वास नहीं करते। उनका मत है कि यूक्रेटाइडीज का हत्यारा डेमटियस द्वितीय नाम का एक राजकुमार था या डेमटियस प्रथम का पुत्र था, अतः उसने अपने पिता के पराभव प्रतिशोध करने के हेतु यूक्रेटाइडीज का वध कर डाला था। भारतवर्ष में दो यूनानी वंश डेमटियस और यूक्रेटाइडीज की पारस्परिक कला का यह परिणाम हुआ कि यूनानी राज्य दो विरोधी वंशों में विभक्त हो गया। बहुत दिनों तक डेमटियस का वंश पूर्वी पंजाब पर और यूक्रेटाइडीज का वंश पश्चिमी पंजाब और काबुल घाटी पर समकालीन ढंग से शासन करते रहे। डेमटियस के उत्तराधिकारी लगभग 165 ईस्वी पूर्व डेमटियस की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उत्तराधिकारियों का क्रम अनिश्चित है। डेमटियस के पश्चात उठी डेमिड वंश के अनेक राजाओं के नाम मुद्राओं से विदित होते हैं, परंतु एकाद को छोड़कर उनके शासन अथवा शासनकाल की घटनाओं के विषय में हमें विशेष ज्ञान नहीं है। तान महोदय का मत है कि डेमटियस के 5 पुत्र थे, यूथिडेमस द्वितीय, डेमटियस द्वितीय, पेटालियन और एगाथोक्लीस। इन चारों की मुद्राएं मिली हैं। इन्होंने अपने पिता की अधीनता में भिन्न भिन्न प्रदेशों पर राज्य किया था मिनेंडर, परंतु डेमटियस के पश्चात यूथिडेमिड वंश का सबसे प्रतापी राजा मिनेंडर हुआ। यह बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों का यमन राजा था। उसका जन्म अलसंद नामक द्वीप में कशशी ग्राम में हुआ था। इस स्थान के समीकरण में काफी मतभेद है। इसका कारण यह है कि पाली मिलिंद पन्हों के अनुसार शाकल से अलसंद की दूरी 200 योजन बताई गई है, परंतु चीनी पन्हों में वह 2000 योजन बताई गई है। प्रसिद्ध विद्वान शिलमन लेवी का मत है कि अलसंद का समीकरण मिश्र के अलेग्जेंड्रिया अर्थात सिकंदरिया से करना चाहिए, परंतु अधिकांश विद्वान उसका समीकरण काबुल के समीप स्थित अलेग्जेंड्रिया से करते हैं। टन महोदय का मत है कि मिनेंडर रक्त से राजवंशी न था, वह एक सामान्य कुल में उत्पन्न हुआ था, परंतु अपनी योग्यता के कारण वह डेमटियस का सेनापति बन गया था। कदाचित वह अत्यंत रणकुशल सेनानी था और उसे युद्धों का काफी अनुभव रहा होगा। इसी से डेमटियस ने अपालोटोर्स आदि राजवंशियों के रहते हुए भी उसे भारतवर्ष के सबसे अधिक महत्वपूर्ण युद्ध प्रयाण पर भेजा था। डेमटियस और अपालोटोर्स की मृत्यु के पश्चात यूथिडेमस राजवंश में कोई भी व्यक्ति ऐसा न था जो भारतवर्ष के यूनानी राज्य को अक्षुण रखता, अतः यह भार मिनेंडर के ऊपर पड़ा। मिनेंडर राजवंशी न था, अतः उसे आशंका थी कि कदाचित यह जनता के हृदय में यथेष्ट राजभक्ति उत्पन्न न कर सके। अपनी इस जन्मज त्रुटि को दूर करने के लिए उसने राजवंश से संबंध स्थापित करना अनिवार्य समझा। उसने डेमटियस की पुत्री अगाथोलिया से विवाह कर लिया। कदाचित यूथिडेमिड वंश को सक्रम रखने की इच्छा से ही अगाथोलिया ने यह संबंध स्वीकार किया था। मिनेंडर एक विशाल राज्य का शासक था। पाटलिपुत्र को छोड़ने के पश्चात उसने मथुरा को अपने राज्य की पूर्वी सीमा पर बनाया था मथुरा में उसकी तथा उसके पुत्र स्ट्रैटो प्रथम की मुद्राएं मिली हैं। वाल्मीकि के कथनानुसार भी मथुरा पर मिनेंडर का अधिकार था। पीछे कहा जा चुका है कि यूक्रेटाइडीज के जीवन का अंतिम काल विपत्ति ग्रस्त था। मिथ्राडेटिस और शकों के आक्रमण ने राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया था। यूक्रेटाइडीज की इस विपत्ति से लाभ उठाकर कदाचित मिनेंडर ने भी उसके राज्य के पूर्वी भाग पर आक्रमण कर दिया। उसने झेलम पार की और पेरोपेनिस डाई तथा गांधार प्रदेश यूक्रेटाइडीज से छीन लिए। पेरोपेनिस डाई में उसकी तरम मुद्राएं मिली हैं। उधर स्वात तथा बजोर के प्रदेश में मिनेंडर के 2 मुद्राएं भांड मिले हैं। इसके अतिरिक्त तीन कोट में उसका एक पात्र लेख प्राप्त हुआ है। इसके ऊपर उसके शासनकाल के 5वें वर्ष की तिथि है। इन सब साक्ष्यों में विदित होता है कि पश्चिम में उसका राज्य पेरोपेनिस डाई तक विस्तृत था। यदि कुछ विद्वानों के मतानुसार यह स्वीकार कर लिया जाए कि पेरोपेनिस डाई प्रदेश में उसकी मुद्राएं व्यापारियों और यात्रियों द्वारा पहुंची थी, तो भी यह मानना ही पड़ेगा कि उसके राज्य की पश्चिमी सीमा गांधार तक अवश्य विस्तृत थी। यह उल्लेखनीय है कि उसकी मुद्राएं आर्कोशिया और सिस्तान में उपलब्ध नहीं हुई हैं। इससे यह प्रकट होता है कि यह प्रदेश उसके राज्य से बाहर थे। पश्चिमी भारत में मिनेंडर का राज्य बैरी गाजा तक था, क्योंकि पेरिप्लस के कथनानुसार इस प्रदेश में उसकी मुद्राएं प्रचलित थी। उसकी कतिपय मुद्राओं पर ऊंट का चित्र कदाचित राजपुताने पर उसका आधिपत्य प्रकट करता है। इसके अतिरिक्त मिनेंडर की मुद्राएं सिंध प्रदेश, सोनपत तथा बुंदेलखंड में प्राप्त हुई हैं, अतः ये समस्त प्रदेश मिनेंडर के अधिकार में थे। सारांशतः अपने उत्कर्ष काल में मिनेंडर का राज्य उत्तर पश्चिम में कपिशा तक, पश्चिम में सिंध तक, दक्षिण पश्चिम में बेरीगाजा तक, दक्षिण में बुंदेलखंड तक और पूर्व में मथुरा तक विस्तृत था। मिलिंद पन्हों के अनुसार इस विशाल राज्य की राजधानी शाकल अर्थात सयालकोट थी। मिनेंडर और बौद्ध धर्म अनेक ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं जिनसे मिनेंडर का बौद्ध होना सिद्ध होता है, परंतु कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने इस विषय पर शंका की है। उनका कथन है कि मिनेंडर बौद्ध नहीं था। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के प्रति उसका अनुराग मात्र था, परंतु यदि हम इन पाश्चात्य विद्वानों की शंकाओं पर विचार करें तो वे अकाट्य सिद्ध नहीं होती। पहला, मिलिंद पन्हों विटरनीज के मतानुसार इस बौद्ध ग्रंथ की रचना संभवतः ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई। वर्तमान मिलिंद पन्हों में 7 अध्याय मिलते हैं, परंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि मौलिक ग्रंथ में केवल प्रथम 3 अध्याय ही थे, शेष 4 अध्याय प्रक्षेप हैं। यही नहीं, 3 अध्यायों में भी स्थान स्थान पर प्रक्षिप्तांश मिलते हैं। ग्रंथ के नामकरण से अनुमान होता है कि इसका विषय एकमात्र मिलिंद अर्थात मिनेंडर के प्रश्नों तक ही सीमित रहा होगा। प्रथम 3 अध्यायों से प्रकट होता है कि यमराज मिलिंद को कुछ धर्म संबंधी शंकाएं थी, जिसे अतंतोगत्वा बौद्ध विद्वान नागसेन ने दूर कर दिया। इन दोनों के प्रश्नोत्तर के पश्चात 3 अध्याय के अंत स्पष्टता लिखा हुआ है कि इस प्रकार मिलिंद के प्रश्नों का अंत होता है। अतः कदाचित मूल मिलिंद पन्हों में यह 3 अध्याय थे। इस मत की पुष्टि चीनी मिलिंद पन्हों से भी हो जाती है। इसमें केवल प्रथम 3 अध्याय ही हैं। अतः विद्वानों का निष्कर्ष है कि आगे के 4 अध्याय बात को जोड़े हुए प्रतीत होते हैं। इन 4 अध्यायों की भाषा शैली और विषय भी कालांतर में जान पड़ते हैं। तान महोदय का कथन है कि मिलिंद के बौद्ध होने और राज्य छोड़ने की बात मिलिंद पन्हों के पक्षितांश में मिलती है, मूल 3 अध्यायों में नहीं। अतः हम इसे ऐतिहासिक नहीं मान सकते। परिणामतः मिलिंद पन्हों के साक्ष्य से मिनेंडर का बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना सिद्ध नहीं होता। यद्यपि हम स्वीकार करते हैं कि मिलिंद पन्हों के अंतिम 4 अध्याय पक्षिप्तांश है, तथापि इस ग्रंथ के मौलिक भाग में मिनेंडर के बौद्ध धर्म अंगीकार करने के बात का उल्लेख न होने पर एक विशेष कारण है। जैसा कि ग्रंथ के नाम से ही प्रकट होता है कि लेखक का मूल उद्देश्य एक प्रश्नोत्तरी की रचना था, जो प्रत्येक बौद्ध धर्म जिज्ञासु का मार्ग प्रदर्शन कर सके। इस काव्यात्मक रचना का चरित्र नायक उसने एक विदेशी शासक को चुना, जो बौद्ध धर्म और दर्शन के सिद्धांतों को विशेष रूप से अवगत न था। लेखक ने मिलिंद के प्रश्नों का उल्लेख किया है और बौद्ध आचार्य नागसेन द्वारा किए गए उसके उत्तरों का। इस प्रकार मिनेंडर का शंका समाधान हो जाता है और ग्रंथ का विषय समाप्त हो जाता है। इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं होता कि यदि लेखक ने अपने ग्रंथ में मिनेंडर के धर्म परिवर्तन का उल्लेख नहीं किया है, यदि वह ऐसा करता तो विषयांतर का दोषी होता, या लेखक के अनुगामियों में नहीं समझा या लेखक के अनुगामियों ने नहीं समझा और उन्होंने उसकी मृत्यु के पश्चात 4 अध्यायों के द्वारा रचना को पूर्ण कर दिया। इसी प्रकार का एक प्रमुख तो संस्कृत साहित्य में भी मिलता है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य कुमार संभवम का विषय कुमार की उत्पत्ति तक ही रखा था। महाकाव्य का नाम ही विषय की सीमा निर्धारित करता है, परंतु कालिदास की मृत्यु के पश्चात अनुगामी लेखकों ने अनेक सर्ग जोड़कर कुमार संभवम के विषय को विस्तासुरवत तक विस्तृत कर दिया। यहाँ तक कहने की आवश्यकता नहीं है कि कुमार संभवम की अनेक प्रतियों में पाए जाने वाले अंतिम सर्ग पक्षिप्तांश हैं। अतः मिलिंद पन्हों के अनुलेख से यह नहीं सिद्ध होता कि मिनेंडर बौद्ध नहीं था। अधिक स्वाभाविक यही प्रतीत होता है कि शंका समाधान हो जाने के पश्चात बौद्ध धर्म में उसका अनुराग और अधिक हो गया हो। दूसरा, अवदान कल्पलता। इस ग्रंथ की रचना 1052 ईस्वी में कश्मीर के कवि क्षेमेंद्र ने की थी। इसमें एक स्थान पर भगवान इंद्र का कथन है कि इस देश में मिलिंद नामक एक राजा स्तूप बनवाएगा। स्तूप निर्माण से मिनेंडर का बौद्ध होना सिद्ध होता है। इस मत के विरोध में निम्नलिखित आपत्तियां की गई हैं। पहला, संभव है कि क्षेमेंद्र द्वारा उल्लिखित मिलिंद कोई और व्यक्ति रहा हो। दूसरा, अवदान कल्पलता बहुत बात की रचना है, हमें इसके कथन पर विश्वास नहीं कर सकते। परंतु इन दोनों आपत्तियों में कोई बल नहीं है। प्रथमतः इंडो यूनानी नरेश मिनेंडर के अतिरिक्त हम किसी भी अन्य मिलिंद से परिचित नहीं है। द्वितीय, कालांतर की रचना होने के मात्र से भी कोई ग्रंथ पूर्ण रूपेण परित्याज्य नहीं हो जाता। क्षेमेंद्र अत्यंत प्रतिभाशाली विद्वान था। उसने अपने वदानों में बहुसंख्यक जनश्रुतियों को संग्रहित किया है। बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के कारण विदेशी मिनेंडर भारतीय जनश्रुति में अमर हो गया था। अतः कोई कारण नहीं है कि क्षेमेंद्र का तत्संबंधी उल्लेख असत्य हो। तीसरा, तारानाथ। इस तिब्बती लेखक का कथन है कि भीती नामक एक बौद्ध भिक्षु ने तुखार के राजा मीनार को बौद्ध धर्म स्वीकार कराया था। कुछ विद्वानों ने मीनार का समीकरण मिनेंडर से किया है। नाम की समता के आधार पर यह समीकरण संभव प्रतीत होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मीनार तुखार का राजा न था। उसे तुखार नरेश कहने में तारानाथ की अशुद्धि की है। तारानाथ ने अशुद्धि की है, परंतु चूंकि इंडो यूनानी बल्ख प्रदेश से ही आए थे, अतः मिनेंडर को उसी प्रदेश से संबंध कर तारानाथ ने जो अशुद्धि की है वो बहुत को स्वाभाविक प्रतीत होती है। बहुत बात को हुए इतिहास लेखकों के द्वारा ब्योरी की अशुद्धियाँ स्वाभाविक है, परंतु सामान्यता उसके मूल तथ्य विश्वसनीय है। हम भौतिक को अनैतिहासिक व्यक्ति मान सकते हैं। मिनेंडर के राज्य विस्तार के विषय में भी तारानाथ अशुद्धि कर सकता है। तारानाथ के बहुत बात के लेखक होने अथवा उसकी रचनाओं में अनेक अशुद्धियाँ ऐतिहासिक कथानों के होने से पूर्ण रूप से अविश्वसनीय नहीं हो सकता। प्रत्येक आलोचक यह स्वीकार करेगा कि तारानाथ के ग्रंथ में विविध ऐतिहासिक सामग्री भी विद्यमान है। चौथा, प्लूटार्क। इस लेखक का कथन है कि मिनेंडर की मृत्यु के पश्चात उसके अवशेषों के लिए विभिन्न नगरों में झगड़ा हुआ। अंत में अवशेष सबके बीच में विभक्त कर दिए गए और प्रत्येक नगर ने उन पर एक एक स्तूप बनवाया। टन महोदय का कथन है कि अवशेषों के ऊपर स्तूप निर्माण से ही मृतक को बौद्ध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्तूप तो चक्रवर्ती राजा के अवशेषों के ऊपर भी बनाया जा सकता है। सिद्धांत की दृष्टि से टन महोदय का यह कथन सत्य है। बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध प्रत्येक बुद्ध लब्ध प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु और चक्रवर्ती राजा के अवशेषों के ऊपर स्तूप बनाए जा सकते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप में हमने किसी भी ऐतिहासिक बौद्धत्तर चक्रवर्ती राजा के अवशेषों के ऊपर स्तूप बनने का दृष्टांत नहीं देखा। अतः मिनेंडर के विषय में भी यह अपवाद क्यों? अवशेषों के ऊपर स्तूप यदि इसलिए बने कि वह चक्रवर्ती होने के साथ साथ बौद्ध भी था। पुनः विटरनीज महोदय ने प्लूटार्क के कथन की सत्यता में भी संदेह किया है। उनका कथन है कि अवशेष विवरण के लिए नगरों की पारस्परिक कला तथा उन पर स्तूप निर्माण की घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात घटी थी, अतः उसी घटना की कालांतर में मिनेंडर के साथ भी जोड़ दिया गया। यद्यपि मिनेंडर के देहावसान के पश्चात वस्तुतः यह घटित नहीं हुई, इस अविश्वास का कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। विदेशी मिनेंडर के भारतीकरण एवं धर्म परिवर्तन की घटना बौद्ध जगत में अति महत्वपूर्ण समझी गई होगी। पुनः, क्या यह संभव है कि महात्मा बुद्ध की जीवनी की वह लोकविदित घटना किसी अबौध के साथ जोड़ी जाती? थोड़ी देर के लिए यदि हम स्वीकार कर भी लें तो मिनेंडर के अवशेषों के ऊपर किसी भी नगर ने स्तूप बनवाए तो भी उसकी जीवनी के साथ इस प्रकार की घटना की कल्पना मात्र ही कम से कम उसे बौद्ध अवश्य सिद्ध कर देती। पांचवा, श्याम की अनुश्रुति। श्याम की अनुश्रुति है कि मिनेंडर के गुरु नागसेन ने अपनी अद्भुत शक्ति के प्रताप से महात्मा बुद्ध की एक बहुमूल्य प्रतिमा निर्मित की थी। इस अनुश्रुति में भी मिनेंडर को बौद्ध आचार्य नागसेन का शिष्य माना गया है, अतः नागसेन द्वारा मिनेंडर के धर्म परिवर्तन की बात की पुष्टि हो जाती है। छठवां, मुद्रा साक्ष्य। मिनेंडर की मुद्राएं भी उसका बौद्ध होना सिद्ध करती है। उसकी कतिपय काश्य मुद्राओं पर धर्म चक्र का चित्र मिलता है तथा अन्य मुद्राओं पर धर्मिकश अर्थात धार्मिकश्य की उपाधि मिलती है। धार्मिक की उपाधि का प्रयोग बौद्धों ने किया था, अतः इसे धारण करते मिनेंडर ने बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने बौद्ध धर्म की घोषणा की थी, परंतु टन महोदय इन चिन्हों को बौद्ध चिन्ह नहीं मानते। उनका कथन है कि मिनेंडर की मुद्राओं पर जो चक्र है उसका कोई भी धार्मिक महत्व नहीं है। इस प्रकार चक्र भारतवर्ष की प्राचीन आहत मुद्राओं पर भी मिलता है। तक्षशिला में इसी प्रकार की मुद्राएं मिली हैं, वहां इनका बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं था। अतः टन महोदय का अनुमान है कि मिनेंडर की मुद्राओं पर प्राप्त होने वाला चक्र विजय चक्र है तथा उनका उसके चक्रवर्तित्व का द्योतक है। इसी प्रकार टन महोदय का कथन है कि मिनेंडर की मुद्राओं पर जो धार्मिक की उपाधि है उसका अर्थ भी एकमात्र न्याय प्रिय है। हमें टन महोदय के निष्कर्षों के विषय में इतना ही कहना है कि चक्र और धार्मिक उपाधि का अन्यत्र चाहे जो भी अर्थ हो, परंतु बौद्ध धर्म के संदर्भ में उनका अर्थ क्रमशः धर्म चक्र और बौद्ध धर्मावलंबी ही होता है। अनेकानेक साक्ष्यों में मिनेंडर का बौद्ध होना सिद्ध है। अतः जब इस बौद्ध नरेश की मुद्राओं पर हम चक्र का चित्र और धार्मिक की उपाधि देखते हैं तो हमारी पहली मानसिक प्रतिक्रिया नहीं होती कि इन दोनों का वही अर्थ होगा जो बौद्ध जगत में समझा जाता था। निष्कर्ष, समस्त साक्ष्यों पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि मिनेंडर बौद्ध था। उपयुक्त साक्ष्यों में व्यक्तिगत रूप से कुछ साक्ष्य निर्बल भले ही हों, परंतु हमें यह न भूलना चाहिए कि विविध और स्वतंत्र दिशाओं से उपलब्ध होने वाले निर्बल साक्ष्यों का समुदाय भी सबल बन जाता है। ऊपर जिन साक्ष्यों पर हमने विचार किया है उनमें भारतीय और विदेशी साहित्यिक तथा मुद्रा संबंधी विविध और स्वतंत्रगामी साक्ष्य हैं। वे सभी उसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बौद्ध कहते हैं के विरुद्ध अन्य किसी भी साक्ष्य से उसका अन्य धर्मावलंबी होने के संकेत भी नहीं मिलता। ऐसी अवस्था में उसे बौद्ध न माना इतिहास के सुप्रतिष्ठित अधिनियमों की अवहेलना करना है। मिनेंडर के उत्तराधिकारी तान्य के मतना अनुसार मिलिंडर की मृत्यु लगभग 147 ईस्वी पूर्व हुई। इसके पश्चात डेमेट्रियस वंश में कोई भी ऐसा प्रतापी राजा न हुआ जो उसके विख्यात और विशाल राज को अक्षत रख सकता। मिलिंडर की मृत्यु के पश्चात का काल इंडो यूनानी इतिहास का पतन काल है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मिलिंडर की पत्नी का नाम अगाथोक्लिया था। कुछ मुद्राएं मिली हैं जिन पर अगाथोक्लिया और स्ट्रैटो दोनों के नाम अंकित हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि स्ट्रैटो अगाथोक्लिया का पुत्र था, संभवतः वह अल्पायु था। इसी से अगाथोक्लिया उसकी संरक्षिका के रूप में उसके नाम से राज्य कर रही थी और यही कारण है कि मुद्राओं के ऊपर दोनों के नाम मिलते हैं। इसके पश्चात कुछ ऐसे भी मुद्राएं मिली हैं जिन पर एकमात्र स्ट्रैटो का नाम मिलता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक स्ट्रैटो वयस्क हो चुका था और उसने राज्य की बागडोर स्वयं अपने हाथ में ले ली तथा स्वतंत्र रूप से अपने नाम से मुद्राएं निर्मित कराई। उसने सोटर की उपाधि धारण की। इस नरेश को स्ट्रैटो प्रथम भी कहते हैं। स्ट्रैटो प्रथम के शासनकाल की प्रमुख घटना है यूथोडेमस वंश और यूक्रेटाइडीज वंश के बीच युद्ध की पुनरावृत्ति। यूक्रेटाइडीज की मृत्यु के पश्चात लगभग 159 या 158 ईस्वी पूर्व हेलियोक्लीस सिंहासनासीन हुआ। इसी समय के लगभग शक छाती के आक्रमण के परिणाम स्वरूप बैक्ट्रिया उसके वंश के हाथ से निकल चुका था। अतः हेलिक्लोलीस ने पूर्व में अपना राज्य विस्तार करना चाहा। अगाथोक्लिया और स्ट्रैटो प्रथम की कुछ सम्मिलित मुद्राएं तथा सनियम स्ट्रैटो प्रथम की कुछ स्वतंत्र मुद्राओं पर हेलिक्लोक्लीस का भी नाम अंकित है। इससे प्रकट होता है कि स्ट्रैटो प्रथम के शासन काल में ही हेलिक्लोक्लीस ने उस पर आक्रमण करके उसे पराजित किया था। इस पराजय के पश्चात पेरपोपोनिस्टाई से लेकर झेलम के पश्चिम तक का संपूर्ण प्रदेश स्ट्रैटो प्रथम के हाथ से निकल गया। इस प्रदेश में हेलिक्लोक्लीस की मुद्राएं मिली है। अगाथोक्लिया और स्ट्रैटो ने गांधार प्रदेश में वृषभ के चित्र में अंकित अपनी मुद्राओं का प्रचलन किया था। इन मुद्राओं को पुष्कलावती शैली के अंतर्गत रखा गया है। इसी प्रकार निकाय प्रदेश अर्थात झेलम के समीपवर्ती में इन दोनों की जो विशिष्ट प्रकार की मुद्राएं मिली हैं, उन्हें विजय शैली की मुद्राएं कहते हैं। इन दोनों प्रकार की मुद्राओं को हेलिक्लोक्लीस ने पुनः अपने नाम से चलाया। इससे प्रकट होता है कि पूर्व में झेलम तक उसका अधिकार हो चुका था। परिणामतः अब यूथेडेमस वंश के हाथ में केवल झेलम से लेकर यमुना तक का प्रदेश रह गया था। स्ट्रैटो प्रथम का शासन दीर्घकालीन था। मुद्राओं से विदित होता है कि कुछ काल तक उसने अपनी माता अगाथोक्लिया के राज्य किया, कुछ काल तक स्वतंत्र रूप से और कुछ काल तक अपने पुत्र स्ट्रैटो द्वितीय के साथ। कुछ मुद्राओं पर वाल्पवेशक के रूप में और कुछ पर वृद्ध के रूप में चित्रित है। इससे भी उसके दीर्घकालीन शासन का प्रमाण मिलता है। कतिपय मुद्राओं के ऊपर स्ट्रैटो प्रथम और स्ट्रैटो द्वितीय नाम मिलते हैं। अतः अनुमान किया जाता है कि लगभग 90 ईस्वी पूर्व स्ट्रैटो प्रथम के पश्चात स्ट्रैटो द्वितीय राज्याधिकारी बना। यह स्ट्रैटो प्रथम का पौत्र था। इसका शासनकाल यूथेडेमस वंश के लिए और भी अधिक अवनति का काल था। इसके पश्चात इंडो यूनानियों का राज्य एकमात्र रावी और झेलम के बीच के छोटे से प्रदेश में रह गया। इस प्रदेश में प्राप्त अनेक छोटे छोटे इंडो यूनानी नरेशों की मुद्राएं मिली हैं। इनमें यानिसियस जाइलस अपालोफेंडीस निसियस अपालोडोर्स द्वितीय हिपोस्टेटस आदि प्रमुख हैं। इनकी और डेमेट्रियस की मुद्राओं में काफी समता है। यह अनुमान किया जाता है कि ये उसी के वंश की प्रतिनिधि हैं। बहुत संभव है कि इनमें से कुछ स्वतंत्र शासक न रहे हों, वरन स्ट्रैटो अथवा उसके उत्तराधिकारियों के अधीनता में शासन कर रहे हों। यूथिडेमस के अंतिम पतन का कारण शकों का उदय है। उनके राजा मावेज अथवा मोंग ने सिर्गी यूथिडेमस वंश के गांधार और सिंध के प्रदेश छीन लिए। मावेज के पश्चात एजिज प्रथम राजा हुआ। उसने यूथिडेमस वंश का मूलोच्छेदन कर दिया। इस वंश के अंतिम राजाओं अपालोडोर्स द्वितीय और हिपास्टेट्स की मुद्राओं पर एजिज प्रथम का भी नाम है। इससे सिद्ध होता है कि एजिज ने इन राजाओं को पराजित करके इनकी मुद्राओं को स्वयं अपने नाम से पुनः प्रचलित कराया था। एजिज प्रथम का काल 30 ईस्वी पूर्व के लगभग है। अतः इसी समय का यूथिडेमस वंश के विलोप का काल समझना चाहिए। यूक्रेटाइडीज वंश, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, यूक्रेटाइडीज की मृत्यु के पश्चात 159 से 158 ईस्वी पूर्व के लगभग हेलिक्लोलीस राजा हुआ। इसी समय शकों ने उसके पैतृक राज्य बैक्ट्रिया पर आक्रमण करके उसे छीन लिया। इस प्रकार हेलिक्लोलीस बैक्ट्रिया का अंतिम यूनानी नरेश था। अतः हेलिक्लोलीस की क्षतिपूर्ति के लिए पूर्व में राज्य विस्तार करना पड़ा। हम पीछे कह चुके हैं कि उसने पूर्व में झेलम तक के संपूर्ण प्रदेश को यूथिडेमस वंश से छीन लिया। यह प्रदेश किसी समय उसके पिता यूक्रेटाइडीस के अधीन था, परंतु यूथिडेमस वंश के प्रतिनिधि मिनेंडर ने उसके पिता से छीन लिया था। अतः अवसर पाकर हेलिक्रोक्लीज ने अपने पिता की पराजय का बदला लिया और इस प्रकार यूथिडेमस वंश और यूक्रेटाइटिस वंश के पुराने वैर की पुनरावृत्ति की। हेलिक्रोक्लीज की पुष्कलावती शैली और विजय शैली की मुद्राओं का पीछे उल्लेख किया जा चुका है। ये उसकी गांधार प्रदेश की विजय और झेलम प्रदेश की विजय की सूचना देती है। इन पर यूथिडेमस वंश की अगाथोक्लिया और स्ट्रेटो प्रथम के साथ हेलिक्रोक्लीज का नाम है। इससे प्रकट होता है कि दोनों को पराजित करके हेलिक्रोक्लीज ने उनकी मुद्राओं को अपने नाम से पुनः चलाया था। अतः उसने पूर्व प्रतिष्ठित एटिक तौल का परित्याग कर पार्शिक तौल को अपनाया। यही तौल भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम में प्रचलित थे। हेलिक्रोक्लीज की मृत्यु लगभग 125 ईस्वी पूर्व हुई होगी। हेलिक्रोक्लीज के पश्चात यूक्रेटाइटिस वंश के शासकों का क्रम और काल दोनों संदिग्ध है। विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख में महाराज अंतलिकित नामक एक यूनानी राजा का उल्लेख है। इस लेख के अनुसार इस यूनानी नरेश ने एक तक्षशिला निवासी हेलियोडोरस को भारतीय नरेश काशीपुत्र भागभद्र की राज्यसभा में अपने राजदूत के रूप में भेजा था। यह घटना काशीपुत्र भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष में घटी थी। विद्वानों ने इस विदिशा लेख के अंतलिखित का समीकरण मुद्राओं के यूनानी नरेश एंटियाक्लीडस के साथ किया है। गांधार महोदय का कथन है कि मुद्रा में चित्रित एंटियाक्लीडस की रूपरेखा बहुत कुछ हेलिक्रोक्लीज से मिलती जुलती है और दोनों की मुद्राएं भी एक शैली की हैं। अर्थात दोनों की मुद्राओं पर एक ओर राजा का चित्र है और दूसरी ओर हाथी का। इस समुदाय के आधार पर टान महोदय का मत है कि एंटियाक्लीडस हेलिक्रोक्लीज का उत्तराधिकारी था। उसका समकालीन भारतीय नरेश काशीपुत्र भागभद्र शुंगवंश का पांचवा अथवा नवा राजा था। उपयुक्त स्तंभ लेख से प्रतीत होता है कि तक्षशिला एंटियाक्लीडस की राजधानी थी और विदिशा भारतीय नरेश के राजा साथ उसका मैत्रीपूर्ण संबंध था। इस समय तक यूनानी भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ चुके थे। विदिशा में हेलिक्रोक्लीडस ने जो गरुड़ ध्वज स्तंभ खड़ा किया है वह उसके भागवत धर्म की सूचना देता है। यही नहीं, इस स्तंभ लेख में वह स्वयं अपने को भागवत कहता है। एंटियाक्लीडस एक शक्तिशाली नरेश था। उसका तीनों यूनानी प्रदेशों पेरोपोनेसडाई पश्चिमी गांधार और पूर्वी गांधार पर शासन था। इन तीनों के शासन क्रमशः कपिशा पुष्कलावती और तक्षशिला थे। इन तीनों प्रादेशिक शैलियों की मुद्राएं चलाई। मुद्राओं से लिसियस नाम के एक यूनानी राजा का पता चला है। उसकी कुछ मुद्राएं स्वतंत्र रूप से निर्मित की गई थी और कुछ सम्मिलित रूप से। स्वतंत्र रूप से निर्मित मुद्राओं पर या तो हेरक्लीस का चित्र है जो राजमुकुट पहन रहा है और या स्वयं लिसियस एलिफेंट स्लेप पहने प्रदर्शित किया गया है। ये दोनों ही मुद्रा चित्र डेमेटियस के हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि लिसियस उसी का वंशज था। इस मत की पुष्टि इस बात से भी होती है कि लिसियस ने डेमेटियस की भी उपाधि अजय धारण की। यूथिडेमिड वंशाली में लिसियस को कहां रखा जाए इसका उत्तर देना बड़ा कठिन है। परंतु यदि टान महोदय के अनुमान को स्वीकार कर लिया जाए तो वह डेमेटियस का पौत्र था। परंतु निश्चित प्रमाणों के अभाव में यह मत संदिग्ध ही है। एंटियाक्लीडस की अंतिम यूनानी राजा था। उसने पेरोपोनेसडाई पश्चिमी गांधार और पूर्वी गांधार के समूचे प्रदेशों पर शासन किया। इसके पश्चात यह प्रादेशिक इकाई भंग हो गई और तीनों प्रदेश पृथक हो गए और तीनों में पृथक राजाओं ने राज्य किया। इस राजनीतिक विघटन ने यूनानी शासन की अवनति को उद्दत्तर कर दिया। मुद्राओं से प्रतीत होता है कि एंटियाक्लीडस के पश्चात पांच यूनानी राजाओं यूमेडीज एम्पेडर फिलोग्लेजेनस यूक्लोओस और आर्किडेमिडोरस ने पश्चिमी गांधार में राज्य किया। इनकी सत्ता का केंद्र पुष्कलावती था। इसके लघु शासन काल को देखते हुए यह भी अनुमान किया जा सकता है कि उनमें से कुछ पश्चिमी गांधार के भिन्न भिन्न जिलों पर सामंतों के रूप में एक ही समय में शासन कर रहे थे। चूंकि सबकी मुद्राएं पुष्कलावती में ही निर्मित हुई थी अतः यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि ये सब समकालीन स्वतंत्र शासक थे। शीघ्र ही इस प्रदेश में यूनानी राज्य का अंत कर दिया। पूर्वी गांधार में एंटियाक्लीडस के पश्चात आर्किडेमिडस शासक हुआ। काबुल भांड में उसकी 30 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसके पश्चात यहाँ भी यूनानी शासक का अंत हो गया। कुछ मुद्राओं से ज्ञात होता है कि कपिशा में टेलीफस नामक एक राजा ने थोड़े समय तक राज्य किया। यह राजा कौन था, कहां से आया था, इस प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा कठिन है। इसकी मुद्राओं पर न यूनानी चित्र है और न यूनानी लेख तथा विरुद्ध इससे प्रतीत होता है कि वह कदाचित यूनानी न था वरन कोई बहिर्गामी था। उसने अशांतिपूर्ण परिस्थिति से लाभ उठाकर कपिशा में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। परंतु कुछ विद्वानों से यूनानी राजा मानते हैं। अमिटास के पश्चात उसका पुत्र हर्म्यूस लगभग 50 ईस्वी पूर्व राजा हुआ। 48 ईस्वी पूर्व उसने संपूर्ण पेरोपोनेसडाई को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार उसने यूनानियों के विलुप्त गौरव को अल्पकाल के लिए पुनः प्रतिष्ठित किया। यह अंतिम यूनानी नरेश था। इसकी कुछ मुद्राओं पर कुषाण नरेश कुजुल कैडिफिसेस का भी नाम मिलता है। कालांतर में कुजुल कैडिफिसेस ने अपनी स्वतंत्र मुद्राओं का भी निर्माण किया। इससे कुछ विद्वानों का निष्कर्ष था कि भारतवर्ष के अंतिम यूनानी नरेश हर्म्यूस को हराकर यूनानी शासन का अंत करने वाला व्यक्ति कुजुल कैडिफिसेस ही था, परंतु यह निष्कर्ष न्यायसंगत नहीं है। कुछ विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि चीनी इतिहासकारों का कथन है कि कुजुल कैडिफिसेस ने यूनानियों को नहीं वरन पहलवों को हराकर राज्य स्थापित किया था। तान महोदय का कथन है कि वह पहलवों ने ही यूनानियों का अंतिम विनाश किया था। पहले उन्होंने कांधार और सिस्तान पर अपना अधिकार जमाया और फिर पेलिरिस की अध्यक्षता में हर्म्यूस से संपूर्ण पेरोपोनेसाई छीन लिया। इस प्रकार 30 ईस्वी पूर्व से लगभग भारतवर्ष से यूनानी शासन का अंत हो गया। कालांतर में कुषाण शक्ति का उदय हुआ। इस जाति के नरेश कुजुल कैडिफिसेस ने पहलवों को हराकर पेरोपोनेसाई पर अपना अधिकार जमाया। इस प्रदेश में यूनानी शासन बहुत दिनों तक रहा था, अतः यहाँ यूनानियों की संख्या भी अधिक थी। अतः जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए कुजुल कैडिफिसेस ने ऐसी मुद्राओं का प्रसार किया जिनमें कुछ नाम के साथ विगत यूनानी नरेश हर्म्यूस का भी नाम था। वास्तव में ये मुद्राएं प्रचार मुद्राएं थी, इनके पीछे एक चाल थी। कुजुल कैडिफिसेस जनता को यह दिखाना चाहता था कि यूनानी हर्म्यूस वास्तविक उत्तराधिकारी वही था। पहलवो तो बहिर्गामी आदत्ताई थे। उन्होंने बलात् यूनानियों के ऊपर शासन आरोपित किया था। इन आदत्ताई पहलवों को पराजित करके कुजुल कैडिफिसेस ने यूनानियों का उद्धार कराया था। इस प्रकार के प्रसार के द्वारा और यूनानियों की सहानुभूति चाहता था। अतः इन विद्वानों का निष्कर्ष यह है कि भारत में यूनानी शासकों के उत्तराधिकारी पहलवो थे और पहलवों के कुशाल, परंतु इस विषय में निर्विवाद रूप से कुछ भी कहा जा सकता है। भारतवर्ष पर यूनानियों का प्रभाव। भारतवर्ष पर यूनानियों के प्रभाव को निश्चित करने के लिए हम इस प्रश्न को तीन शीर्षकों में बांटेंगे और देखेंगे कि यह प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत भारतीय और यूनानियों का संपर्क तथा संबंध एक दूसरे को किस सीमा तक प्रभावित कर सका था। पहला, सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भारत यूनान का संबंध। सिकंदर के आक्रमण के पूर्व इन दोनों देशों में कोई संबंध संपर्क था, इस विषय पर विद्वानों के मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि सिकंदर के पूर्व भारतवर्ष और यूनान का प्रत्यक्ष रूप से कोई संपर्क न था। भारतीय अधिकांशता बेबीलोन अथवा लाल सागर तक व्यापार के लिए जाते थे। वहां से उनकी सामग्री अन्य माध्यमों के द्वारा आगे के प्रदेशों में पहुंचाई जाती। पर डॉक्टर भंडारकर महोदय का मत है कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व ही भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम में यूनानियों का एक उपनिवेश था और इसी के द्वारा दोनों देशों की जातियों में संपर्क स्थापित हुआ था। पाणिनि के अष्टाध्याय में यूनानियों का उल्लेख है। इससे भी प्रकट होता है कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व दोनों जातियां एक दूसरे के संपर्क में आ चुकी थी। यूनान में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम पाइथागोरस ने किया था। राथ महोदय का मत है कि यह सिद्धांत भारतवर्ष में ऋग्वैदिक काल से ही प्रचलित था। उपनिषद काल में तो यह सिद्धांत निश्चित रूप से भारतवर्ष में प्रतिष्ठित हो चुका था। इस आधार पर कुछ विद्वान यह मानते हैं कि पाइथागोरस ने यह सिद्धांत भारतीयों से ग्रहण किया था। अतः सिकंदर के आक्रमण के पूर्व ही दोनों जातियों का संपर्क स्थापित हो चुका था। यही नहीं, कुछ विद्वान पाइथागोरस के मांस भक्षण निषेध के सिद्धांत पर भारतीय बौद्ध धर्म और रेखा गणित के इसके साध्य पर भारतीय सुलभ सूत्र का प्रभाव देखते हैं। कुछ ने यूनानी दार्शनिक प्लेटो के अनेक सिद्धांतों पर भारतीय सांख्य दर्शन की छाप देखी है और इन आकारों पर सिकंदर के पूर्व भारतीय और यूनानियों का संपर्क सिद्ध करने की चेष्टा की है, परंतु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उपयुक्त मतों में कोई भी मत असंदिग्ध नहीं है। दूसरा, सिकंदर के आक्रमण के समय, इस समय भारतीय यूनानी निश्चित रूप से एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में आए। संभव था कि यदि सिकंदर पंजाब के आगे बढ़ता अथवा पंजाब सिंध की विजय के पश्चात वह अधिक समय तक जीवित रहता तो इस आक्रमण का प्रभाव कहीं अधिक पड़ता, परंतु योगवश उसका अभियान भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहा। पुनः वह कुल मिलाकर केवल 19 मास ही भारतवर्ष में रहा। इस अल्प काल में भी वह तथा उसके सहयोग यूनानी निरंतर युद्धों में लगे रहे। परिणामतः प्रत्यक्ष संपर्क होने के पश्चात भी दोनों जातियों का किसी बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान न हो सका। भारतवासी शीघ्र ही इन आक्रमणों को भूल गए। अंग्रेजी कवि मैथ्यू आर्कराइट ने ठीक ही कहा है, द ईस्ट बोर्ड बिफोर द लेस इंपेंटेंट डीप डिस्टेन लेट द लिगेंस टेंडर पास एंड लॉग्ड इन थॉग्ड अगेन। परंतु फिर भी इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना पूर्णतः निष्प्रभाव न हो सकती थी। कुछ क्षेत्रों में सिकंदर के आक्रमण ने अवश्य अपने प्रभाव दिखाए, इनका हम पीछे उल्लेख कर चुके हैं। तीसरा, इसी पूर्व दूसरी शताब्दी पर यूनानी आक्रमण। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारतवर्ष के एक बड़े भाग पर यूनानियों का राज्य स्थापित हो गया था। इस बार यूनानी लगभग 150 वर्षों तक भारतवर्ष के शासक रहे। अतः स्पष्ट है कि इस काल में उनका और भारतीयों का घनिष्ठ संपर्क संबंध स्थापित हो गया था, जिसने दोनों जातियों भारतीयों के बीच महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आदान प्रदान उत्पन्न किया। हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इस आदान प्रदान का अध्ययन करेंगे। साहित्य तान महोदय का मत है कि भारतीयों और यूनानियों ने एक दूसरे की भाषा में बहुत संख्यक शब्द ग्रहण किए। भारतीयों ने यूनानियों से भी संभवतः कलम, पुस्तक, सुरंग आदि शब्द ग्रहण किए। इसी प्रकार यूनानियों ने भारतीयों से मरकट, वैद्यु, ऋग्वेद, पिप्सी, कर्पास, शर्करा आदि शब्द लिए। इस विद्वान के अनुसार भारतीयों ने संभवतः यूनानी भाषा भी सीख ली थी और संभवतः मिलिंद पन्हो और युग पुराण के लेखक यूनानी भाषा मानते थे। इसके निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। पहला, मिलिंद पन्हो वार्तालाप की शैली में है। प्लेटो की रिपब्लिक भी इसी शैली में है। संभवतः मिलिंद पन्हो के लेखक ने यह शैली यूनानी साहित्य से ग्रहण की है। दूसरा, युग पुराण में यूनानी आक्रमण का वर्णन है। कदाचित यूनानी आक्रमण का वर्णन किसी यूनानी पुस्तक में किया गया होगा। उसी ग्रंथ को पढ़कर युग पुराण के रचयिता ने अपने ग्रंथ में यूनानी आक्रमण का वर्णन किया था। परंतु ये दोनों मत नितांत असंगत है। वार्तालाप की शैली में भारतवर्ष में ऋग्वैदिक काल से प्रचलित थी। इसके प्रयोग के लिए भारतीयों को प्लेटो की रिपब्लिक पढ़ने की आवश्यकता न थी। पुनः यह कथन की युग पुराण के यूनानी आक्रमण का वर्णन किसी यूनानी ग्रंथ पर आधारित है नितांत कल्पना जन्य है। जैकोबी महोदय ने यह मत प्रस्तुत किया है कि भारतीयों ने दोहा यूनानियों से सीखा व यूनानियों के मेटर के आधार पर बना। तब तक यह है कि दोहा सर्वप्रथम अभ्रंश भाषा में मिलता है। अभ्रंश भाषा सर्वप्रथम अभीरो की भाषा थी। अभीर मिनेंडर के राज्य में अबीरिया के निवासी थे, परंतु किथ महोदय ने इस मत का खंडन किया और कहा कि दोहा मिनेंडर के आगमन के पूर्व ही भारतवर्ष में प्रचलित था। वेबर महोदय का मत है कि संस्कृत नाटक का उदय यूनानी नाटकों से हुआ। यह मत दोनों भाषाओं के निम्नलिखित साम्य पर निर्भर है। पहला, यूनानी नाटकों में पैरासाइट होता है, उसी प्रकार संस्कृत नाटकों में विदूषक। दूसरा, यूनानी नाट्यशास्त्र के अंतर्गत रंगमंच पर एक समय 5 पात्रों से अधिक नहीं आते, यह नियम संस्कृत नाट्यशास्त्र में है। तीसरा, यूनानी नाट्यशास्त्र के अंतर्गत रंगमंच पर मृत्यु, अग्निकांड आदि के दृश्य दिखाना निषिद्ध था, यही बात भारतीय रंगमंच की भी थी। चौथा, भारतीय रंगमंच पर यवनिका का प्रयोग यूनान से आया। तो हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि ऊपरी साम्य के साथ साथ भारतीय यूनानी नाटकों में विभिन्नताएं भी हैं। पहला, यूनानी नाटक प्रधानता गद्य में है, जबकि भारतीय नाटकों में गद्य और पद दोनों का प्रयोग किया गया है। दूसरा, यूनानी नाटक मूलतः दुखांत होते हैं, परंतु भारतीय नाटक अंततः सुखांत होते हैं। तीसरा, यूनानी नाटकों में तीनों संधियों का प्रयोग मिलता है, परंतु भारतीय नाटकों में इनका पालन नहीं हुआ है। इन विरोधों के होते हुए भी हम भारतीय नाटक को यूनानी नाटक की अनुकृति नहीं मान सकते। प्लूटार्क का कथन है कि सूसा नगर में यूरोपाइडीस और सोफोक्लीज नामक यूनानी नाटककारों के नाटक खेले जाते थे। इस पर कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि इस प्रकार के यूनानी नाटकों का प्रदर्शन भारत में भी होता था। मार्शल महोदय ने पेशावर में एक भग्न पात्र पाया था। इस विद्वान का मत है कि इस पर साइफोक्लीज के एक नाटक का दृश्य है। ब्लैक महोदय ने दक्षिण भारत में एक गुहा द्वार पर किसी भवन के ध्वंसान शेष पाए हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि यह भवन का एक नाट्यशाला था जहां संभवतः यूनानी नाटक खेले जाते, परंतु ये सारे मत संदिग्ध हैं। ये बातें ऐसी हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतवासी यूनानी भाषा न जानते थे, अतः उसके यूनानी नाटकों के देखने का प्रश्न ही नहीं उठता। पहला, भारतवर्ष के यूनानी शासकों की मुद्राओं पर दो लिपियों का प्रयोग किया गया है, खरोष्ठी और यूनानी का। यदि भारतवासी यूनानी समझते होते तो फिर मुद्राओं का एकमात्र यूनानी लिपि का ही प्रयोग होता, भारतीय लिपि खरोष्ठी के प्रयोग की आवश्यकता न पड़ती। दूसरा, अपने 150 वर्ष के शासन काल में यूनानियों ने एक भी शिलालेख ऐसा न खुदवाया जिस पर यूनानी भाषा में लेख हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनकी भारतीय प्रजा यूनानी न समझती थी। दूसरी शताब्दी में संत क्रिस्टोम का कथन था कि भारत के निवासी होमर के काव्य गाते हैं और उन्होंने अपनी भाषा में उनका अनुवाद कर लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय महाकाव्य रामायण महाभारत के कथानक कुछ वंशों में होमर के महाकाव्यों इलियड और ओडिसी के कथानकों से मिलते जुलते हैं, परंतु इस ऊपरी समता को देखकर यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि भारतीय महाकाव्य होमर के महाकाव्यों के अनुसार ही अनुकृति है। मिस्र के सिकंदरिया नगर में भारतीय और यूनानी दोनों रहते थे। वही यूनानियों ने भारतीयों से उनके महाकाव्यों के कथानक सुने होंगे और कुछ समता को देखकर उन्होंने यह अनुमान कर लिया होगा कि भारतीयों ने अपनी भाषा में उनके महाकाव्यों में अनुवाद कर लिए हैं। ज्योतिष इस क्षेत्र में भारतीयों के ऊपर यूनानियों का प्रभाव निर्विवाद है। गार्गी संहिता का कथन है कि यद्यपि यवन मलेच्छ हैं, तथापि ज्योतिष का प्रकांड ज्ञाता होने के कारण वे ऋषियों की भांति पूज्य हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में व्यवहार अनेक शब्द यूनानी हैं, यथा केंद्र, लिप्त, हीरा इत्यादि। भारतवर्ष की मेष, वृषभ आदि राशियां यूनानी नामों के रूपांतर प्रतीत होती हैं। भारतवर्ष के दो ज्योतिष 5 सिद्धांतों में 2 के नाम रोमक सिद्धांत और पौलिश सिद्धांत से भी प्रकट होता है कि वे यूनानियों से ग्रहण किए गए हैं। चिकित्सा शास्त्र बोगेल आदि विद्वानों का मत है कि चिकित्सा शास्त्र में भी भारतवर्ष यूनानियों का रीढ़ी है। अपने मत की पुष्टि में ये विद्वान कहते हैं कि चरक ने वैद्य के आचार के विषय में जो नियम रखे थे वे यूनानी चिकित्सा शास्त्री हिप्पोक्रेटिस के नियमों में बहुत कुछ मिलते हैं, परंतु यह निष्कर्ष नितांत संदिग्ध है। यह क्षमता आकस्मिक भी हो सकती है। कला में यूनानी प्रभाव दृष्टिगत होता है। दुर्भाग्य से उस समय की वास्तुकला के उदाहरण आज अधिक संख्या में उपलब्ध नहीं होते। तक्षशिला में प्राप्त एक मंदिर तथा कुछ अन्य भवनों पर यूनानी वास्तुकला का प्रभाव माना जा सकता है। वास्तुकला कला के क्षेत्र में यूनानी प्रभाव अधिक स्पष्ट है। इस प्रभाव के अंतर्गत पारस में जिस कला का उदय हुआ है वह गांधार कला कहलाती है। कभी कभी इसे इंडो यूनानी कला भी कहते हैं। इसमें विषय तो भारत का है परंतु शैली यूनानी है। इस कला का विशेष अध्ययन हम कनिष्क के अध्याय में करेंगे। मुद्रा निर्माण में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। यूनानियों के संपर्क में आने के पूर्व भारतीय मुद्राएं बेडोल और लेख विहीन होती थी, परंतु यूनानी प्रभाव के अंतर्गत वे सुडोल कलात्मक और अभिलेख युक्त होने लगे। यूनानी शब्द दक्खम भी भारतीय भाषा में ग्रहण कर लिया गया। यूनानियों का धर्म परिवर्तन और भारतीयकरण, परंतु भारतीय संस्कृति के प्रबल प्रभाव ने सिर्फ विजेता यूनानियों को अपने भीतर निमंजित कर लिया। अनेक यूनानी भारतीय धर्मों को अपना पूर्णता भारतीय बन गए अपना कर पूर्णता भारतीय बन गए। मिनेंडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इसके अतिरिक्त हम बेस नगर अभिलेख में हेलोडोरस का नाम पाते हैं जो भागवत हो गया था। स्वात में प्राप्त एक कलश लेख से प्रकट होता है कि थियोडेरस नामक एक अन्य यूनानी बौद्ध हो गया था।